ओम शांति, ओम शांति। प्लीज पुट ऑन योर हेडफोन्स। कई भाई बहने अभी पता चला कि जहाँ हेडफोन्स रखे हैं वहाँ हिंदी वाले भाई बहने बैठे हैं। जो पीछे देखिए आपके सीट पर कहीं हेडफोन तो नहीं है, वो हेडफोन विदेशी भाई बहनों के अक्का के लिए है, तो वहाँ आप न बैठे। जरा देखिए जो भारत वाले बैठे हैं आसपास कहीं हेडफोन हो। डबल फॉरेनर्स, ट्रांसलेटर्स प्लीज गो टू योर बूथ्स। ओके, एक मिनट में पहले ऑलराइट, इंग्लिश ट्रांसलेशन इज ओके। ओके इंग्लिश ट्रांसलेशन, बिकॉज दिस ब्रदर इज गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग एंड यू विल गेट ट्रांसलेशन। यस ओके, रशियन ट्रांसलेशन। ओके रशियन, रेज योर हैंड। रशियन, नो, वेयर आर रशियंस? ओके ट्रांसलेशन। ओके पोर्चुगीज, पोर्चुगीज ट्रांसलेशन। ओके स्पेनिश, तमिल। ओके ऑल ओके, ओके ओम शांति। कल हम सभी ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाएंगे। कल का दिन 18 जनवरी का तो बड़ा ही न्यारा प्यारा दिवस होता है, लेकिन आज भी 18 जनवरी की पूर्व संध्या हम सबके लिए भी बहुत ही शुभ है। और विशेष रूप से हमने निर्मला दीदी जी को आमंत्रित किया कि वह ब्रह्मा बाबा के संस्मरण सुनाएं। वैसे तो दीदी को तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ के उनके संस्मरण क्या है वो तो बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि दीदी जिनको बाबा निर्मल आश्रम कहते थे, निर्मल आश्रम बहुत ही सुंदर नाम है, निर्मला को निर्मल आश्रम। जितनी ही दीदी गंभीर है उतनी ही दीदी योगयुक्त है, उतनी ही प्यारे बाबा की बहुत ही आज्ञाकारी बच्ची थी। आज्ञाकारी बच्ची होने के कारण बाबा ने जो कहा उनको पूरा फॉलो करती थी, तो ब्रह्मा बाबा के दिल पर भी बहुत चढ़ी। और कैसे आज हम देख रहे हैं कितनी बड़ी सेवा दीदी कर रही है। केवल ज्ञान सरोवर की ही डायरेक्टर नहीं है, लेकिन एशिया के जितने भी देश हैं, बहुत सारे देश हैं, मुझे तो पता नहीं कितने देश में बाबा के सेंटर्स है, लगभग सभी देशों में हैं, जहाँ दीदी हर साल जाते रहते हैं, इतनी ट्रैवल भी करते हैं और सबको कितना सुंदर रूप से संभालते हैं। तो दादी जानकी जी भी कितनी निश्चिंत है निर्मला दीदी से, क्योंकि ज्ञान सरोवर भी संभाल रहे हैं, निर्विघ्न चल रहा है, इतने सारे रिट्रीट्स होते हैं, इतने सारे विंग्स के प्रोग्राम होते हैं, इतने सारे डबल विदेशियों के प्रोग्राम होते हैं और सब दीदी जी की अध्यक्षता में ही होते हैं, और फिर एशिया को भी पूरा संभालते हैं। तो कैसे इतना विशाल कार्य करते हुए भी दीदी कितनी निर्माण है, कितनी हल्की है उनको हम देखते हैं। तो हम सब पहले तो दीदी जी का करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। और दीदी के संस्मरण हम सुनेंगे, उसके पहले हल्दर भाई ब्रह्मा बाबा की स्मृति का एक बहुत सुंदर गीत हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे और फिर हम दीदी जी से सुनेंगे।
एक सागर आपने बाबा स्नेह में सबको समा लिया, स्नेह के सागर आपने बाबा स्नेह में सबको समा लिया, स्मृतियों के वरदानों से समर्थ हमको बना दिया, स्नेह के सागर आपने बाबा स्नेह में सबको समा लिया, स्नेह के सागर आपने बाबा स्नेह में सबको समा लिया। पर प्रेम के गीत सुनाए हैं, स्नेह असुवन की मालाएं ले बच्चों ने पहनाए हैं, घर की मोहब्बत की बाहों ने मेहनत से हमें छुड़ा लिया, स्नेह के सागर आपने बाबा स्नेह में सबको समा लिया, स्नेह के सागर आपने बाबा स्नेह में सबको समा लिया। आपकी ये फुलवारी महक रही फल फूल रही, हर के आत्मा अतिंद्रिय सुख के झूलों में झूल रही, बनिए आप सा निभाए वादा अपने वादा निभा दिया, स्नेह के सागर आपने बाबा स्नेह में सबको समा लिया, स्नेह के सागर आपने बाबा स्नेह में सबको समा लिया। मिलता कहीं मिसाल नहीं,
मिल न सके साकार में हम किसी को रहा मलाल नहीं। सेवा में दो जीवन क्या संगम युग सारा लगा दिया। स्नेह के सागर आपने बाबा स्नेह में सबको समा लिया। स्नेह के सागर आपने बाबा स्नेह में सबको समा लिया। स्नेह के सागर आपने बाबा स्नेह में सबको समा लिया। स्नेह के सागर आपने बाबा स्नेह में सबको समा लिया।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आप सभी स्नेह के सागर में समाने आए हो, शांति के सागर में समाने आए हो, या सुख के सागर में समाने आए हो, या अव्यक्त बनने आए हो। 18 जनवरी निमित्त काफी भाई बहने, पुराने भाई बहन दौड़ते दौड़ते मधुबन पहुंच गए, और आप सभी भाग्यशाली हो कि आपको पांडव भवन में रहने का चांस मिला। देखो नीचे तो 15-20 हजार लोग बैठे हैं, उसमें से कुछ थोड़े ही ऊपर आ सकेंगे, बाकी उन्हों को नीचे ही अव्यक्त दिवस मनाना पड़ेगा। तो स्मृति दिवस जो हमें समर्थ बनाता है, अव्यक्त दिवस जो हमें अव्यक्त बनाता है, उस दिन या हर दिन हम मेरा बाबा कहते हैं, सभी मेरा बाबा कहते हैं, अपनापन फील होता है। चाहे साकार में मेजोरिटी में से आप में से किसी ने देखा नहीं होगा, फिर भी फील होता है मेरा बाबा। तो उस प्यार में दौड़ते दौड़ते पहुंच गए। तो हमारा ये संस्मरण है कि जब मैं पहले दिन सेंटर पर पहुंची, तो उस समय तो मुंबई में मम्मा थी। ब्रह्मा बाबा से साकार में मिलना तो 1 साल और 5 मास के बाद हुआ, परंतु जब से ज्ञान में आए तो हफ्ते 15 दिन में ही हमने साकार बाबा को पत्र लिखा कि बाबा हम आपके बच्ची बनी हूँ, और अपना थोड़ा आधे पेज में परिचय दिया। तो उन दिनों में ज्ञान में आते ही हम बाबा को परिचय लिखते थे, और 1-2 मास के बाद हमने अपना फिर से कर्म कहानी लिखकर भेजा। तो रतन मोहिनी दादी बंबई से मधुबन आ रही थी, तो नेचुरली है जिन्हों के पत्रों की फाइल होंगी उसमें हमारा पत्र भी था, और उन दिनों में पत्र पर हमारा पासपोर्ट साइज फोटो भी हम देते थे। तो साकार बाबा ने जैसे कि
पत्र पढ़कर और फोटो देखकर ही हमको पहचान लिया। यही बाबा की समझो मैं कहूँ त्रिकालदर्शी कहो या परखने की शक्ति कहो कि कोई भी व्यक्ति को वो 5 मिनट में ही मिलते ही पहचान लेते थे। क्योंकि कई बार टीचर बहने हैं गाइड बनकर मधुबन अपने ग्रुप को ले आती थी और नेचुरली है कि टीचर तो ऊपर ऊपर से अपने स्टूडेंट्स को जानेंगी, ये बहुत सर्विसेबल है, तन मन धन से सेवा करता है आदि आदि कहकर पहचान देती थी। परंतु बाबा आदि मध्यान जान जाते थे, 5 मिनट में जाने के बाद टीचर के और स्टूडेंट के जाने के बाद जो दादी बाबा को ये पास बैठती थी उसको अपना ओपिनियन दे देते थे कि ये चलने वाला है या नहीं चलने वाला, या ये सिर्फ शोई पिक्चर है, फौरन जान देते थे। तब तन्मयी दादी ने भी बंबई आकर फिर समाचार दिया कि बाबा ने आपको फोटो देखा और पहचाना। तो उन दिनों में तो हम थोड़े ही ब्राह्मण थे, तो बीच बीच में पत्र व्यवहार करते रहते थे, तो इसलिए जो हमने बाबा को प्रत्यक्ष नहीं देखा था फिर भी पत्र व्यवहार द्वारा हम बाबा को पत्र लिखते रहते थे और बाबा भी हमें उत्तर भेजते रहते थे लाल अक्षरों में। तो मेजोरिटी टाइम तो जब स्टूडेंट थे तो एक शब्द में एक लाइन में दादी को जो सेंटर पर पत्र लिखते थे, तो उस समय हमारे बंबई में पुष्प शांता दादी और निर्मल शांता दादी दोनों सेंटर पर थे। तो जब भी सेंटर पर पत्र आता था तो मैं तो समझो ज्ञान में आने के बाद तो 2-3 साल अपने घर में ही रही, तो जब भी पत्र आता था तो दादी फोन पर बताती थी कि निर्मला आज बाबा ने तुमको याद पत्र भेजा है, और सुनाती थी पत्र पढ़कर तो हमारा नशा चढ़ जाता था कि वाह बाबा ने हमको याद दिया। और जो भी बाबा पत्र लिखते थे तो उस समय तो हम नए नए थे तो इतना समझो समझ नहीं पाए, परंतु बाद में हमने देखा कि बाबा जो हमारे आंतरिक गुण है उनको या कमी है उसको जान जाते थे और पत्रों में हमेशा टाइटल लिखते थे। तो उस टाइटल को अभी पढ़ते हैं तो समझते हैं कि हाँ सचमुच बाबा ने हमको बहुत अच्छी रीत से पहचान लिया था, क्योंकि अज्ञानता में तो हम अपने आप को देखते ही नहीं कि हम क्या है कैसे हमारे क्या गुण है क्या कमी है कभी देखते नहीं, परंतु बाबा के पत्र द्वारा जैसे कि हमें अपना साक्षात्कार होता था। तो फिर ज्ञान में आने के बाद बंबई में मम्मा उस समय 9 मास रही, तो इसलिए मैंने मम्मा से पूछा 4-5 मास हुआ था ज्ञान में कि मम्मा मैं अपनी डॉक्टरी नहीं करना चाहती हूँ, ईश्वरी सेवा में लगना चाहती हूँ। मम्मा ने कहा कि अभी ठहरो, जब तुम ब्रह्मा बाबा से मिलो ना तब पूछना। तो इसलिए फिर हम चुप करके अपनी डॉक्टरी नौकरी करती रही, क्योंकि मैं जब ज्ञान में आई तब हमने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली थी और लक्ष्य था कि मुझे कहाँ गांव में जाकर सेवा करनी है, तो इसलिए हमने सोचा कि मुंबई में ही हॉस्पिटलों में डिस्पेंसरी में थोड़ा अनुभव ले लें, ताकि गांव में जहाँ कोई डॉक्टर न हो हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा बम्बई में रहकर ही प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस करती रही, अपना नौकरी करती रही। और उस समय जब मैं ज्ञान में आई तो इंडिया और चाइना का युद्ध चलता था, और जो भी गवर्नमेंट के म्युनिसिपैलिटी के जो भी नौकर थे उनको कहा था कि आपके अपने पे से जितना आप देना चाहो वो आपकी पे से ही हम कमी करके नेशनल डिफेंस फंड में देंगे। 62 में इंडिया पाक चाइना का वॉर चलता था, तो हम अज्ञानता में तो मैं क्या करती थी, 90% मेरी इनकम होती थी, क्योंकि हमारा घर में कोई इतना खर्च नहीं होता था और पिताजी धनवान थे, तो इसलिए हमको कोई बचत करने के संस्कार नहीं थे, तो हम 20% अपने खर्चे के रहे रखकर 80-90% यज्ञ अरे वहां देती थी नेशनल डिफेंस फंड में। फिर 4-5 मास के बाद किसी व्यक्ति कोई एक दमा कुमार भाई ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं तो अपनी पूरी पे सेंटर पर दे देता हूँ, तो मैंने कहा मैं क्यों नेशनल डिफेंस फंड में इतना दूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया कि नेशनल फंड में 10-15% रखकर बाकी का यज्ञ में देना शुरू कर दिया। फिर समझो करीब 1.25 साल हुआ था, तो दादी निर्मल शांता यूपी और पंजाब के टूर पर जा रही थी, तो हमको भी पूछा तुम आना चाहती हो, तो मैं और दूसरे भी एक दो जने तैयार होके हम 4 का ग्रुप यूपी पंजाब का दौरा करके हमारा लक्ष्य था अंत में माउंट आबू आना और आबू से पीछे वापस यहाँ बम्बई जाना। तो हम समझो मई मास की छुट्टी में, अप्रैल मई मास की छुट्टी में दौरे पर गई और मई मास में हम यहाँ आबू में पहुंची। तब पहली बारी बाबा से मिलन हुआ, तो बाबा तो जैसे उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था और स्नेह का सागर ही था ही, तो उनको जैसे हम आते हैं आकर मिलते हैं तो स्नान पानी करके पहले बाबा से मिलते हैं, तो इसलिए किसी से बाबा से मिलना हुआ 2-3 बारी मिलना होता है, पहले आते ही मिलते हैं, फिर बाबा को गिफ्ट देने के लिए बाबा अपने कमरे में बुलाते थे। उस समय तो छोटा ही ग्रुप होता था, तो बाबा अपने कमरे में ही ग्रुप को बुलाकर गिफ्ट देते थे, तो गिफ्ट देते समय बाबा ने पूछा कि आपके घर में कितने लोग हैं, फिर लच्छू को कहा हर एक के लिए कुछ गिफ्ट लाओ, ऐसे बाबा ने बहुत उदार दिली से घर के हर मेंबर के लिए गिफ्ट दी। और जब मैं टूर पर निकली तो कुछ 1000 रुपया लेके निकली थी, परंतु सेंटरों पर तो कुछ देना नहीं होता था, और भी वो लोग जो भी गाड़ी भाड़ा टैक्सी भाड़ा है वो तो सेंटर वाले ही करते थे, दादी हमारे साथ थी, तो मेरा तो कुछ खर्च नहीं हुआ, तो जो भी हमारा बचत था हमने यज्ञ में दे दिया। फिर समझो बाबा भी बम्बई में आता रहा, क्योंकि हमारे सामने एक बारी बाबा दो मास रहा और दूसरी बारी बाबा एक मास रहा, तो 6 साल में बाबा 2 बारी आए और 3 मास बंबई में रहे। बाकी हम लोग तो जैसे ग्रुप के साथ आते हैं, साल में 1 बारी मधुबन आते रहते थे। तो पहली बारी ही जब मैं आई तो मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि बाबा मैं डॉक्टरी तो पास कर ली है, परंतु मेरा विचार नहीं है कि मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस करूं, मेरा विचार है कि मैं बाबा की सेवा में लग जाऊं। तो बाबा कहे नहीं नहीं, तुम तो रूहानी डॉक्टर भी हो तो जिस्मानी डॉक्टर भी हो, तुमको दोनों डॉक्टरी करनी है, तुम डबल डॉक्टर बनना। तो इस रीति से बाबा ने मना की कि नहीं, प्रैक्टिस छोड़नी देनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो हमने कहा ठीक है, जैसे बाबा ने कहा, हमने कभी सवाल नहीं किया कि करना है नहीं करना है। और फिर 1964 में प्रकाशमणि दादी बंबई में आई और निर्मल शांता दादी को बाबा ने कलकत्ता भेजा। तो क्योंकि हमको शुरू में निर्मल शांता दादी ने पालना दी थी और निर्मल शांता दादी जा रही थी, तो सभी ने समझा सेंटर पर कि इसको दुख होगा कि दादी जा रही है कलकत्ता, परंतु हमको तो क्या था, बाबा का ज्ञान लेना था और जो भी दादी है टीचर है उनसे पालना लेनी थी, तो इसलिए हमको तो कुछ दुख नहीं हुआ ना हमको जब सेंटर पर रहने गई कोई दुख हुआ। तो इसलिए बाबा ने हमको नष्ट मोह का त्याग दिया। और जैसे कि बाबा को तो नहीं, जैसे कोई व्यक्ति को सामने आते ही, या जैसे हम लोग गोदी में जाते थे तो गोदी में भी जाते थे तो बाबा को तो फीलिंग आती है ना कि पवित्रता की कितनी शक्ति है। तो क्योंकि शुरू से ही हमको कोई भाइयों तरफ आकर्षण नहीं थी और फ्रेंडशिप भी नहीं रखते थे, क्योंकि 1950s में स्टडी किया तो उन दिनों में तो लौकिक में भी हम लोग ऐसे होते थे जो भाइयों से कुछ ज्यादा बातचीत नहीं करनी होती थी। तो इसलिए कोई बॉयफ्रेंड है या किसी के प्रति आकर्षण है या शादी करना है या कोई विचार ही नहीं था। इवन जब ने मैंने स्कूल सर्टिफिकेट लिया, मैट्रिक उस दिनों में मैट्रिक कहते थे, मैट्रिक पास किया तो घर में उन दिनों में तो 52 में क्या करते थे, 17 साल की लड़की हुई मैट्रिक पास हुई तो सगाई की बात शुरू कर देते हैं। तो हमने हमारे लौकिक पिता को कहा, क्योंकि हमारे मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो पिताजी की इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, तो उन्होंने लड़का ढूंढना शुरू किया। मैंने कहा या तो मैं शादी करूंगी या तो मैं पढ़ाई करूंगी, दोनों काम नहीं हो सकता। तो हमारे पिताजी ने कहा ठीक है छोड़ दो, शादी की बात छोड़ दो। तो इसलिए हमने कहा जब तक हम डॉक्टरी नहीं पढ़ जाएंगे तब तक हमको सोचना नहीं है, और डॉक्टरी पढ़कर भी मुझे जाना है गांव में सेवा करने, क्योंकि मुंबई में बहुत डॉक्टर है, एक ही गली में 2-3 डॉक्टर होते हैं। मैंने कहा इतने डॉक्टर हैं, यहाँ रहकर मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। कमाई का तो लक्ष्य ही नहीं था हमारा, शुरू से सेवा का ही लक्ष्य था, इसलिए मेडिकल स्टडी की। तो इसलिए हमने मन में ही सोचा था कि जब तक हमको ऐसा कोई साथी नहीं मिलेगा जो हमारे साथ गांव में आए तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तो इसलिए न हमने सोचा न हमारे लौकिक माँ बाप ने कुछ शादी की कोई बात की, जब तक हमने पढ़ लिया। और पढ़ाई के बाद फौरन मैं ज्ञान में आ गई। तो जैसे बाबा ने हमारी पवित्रता की समझो संस्कार देकर निर्मल आश्रम का टाइटल दिया, क्योंकि निर्मला भी स्वच्छ और आश्रम भी पवित्र होता है। तो ये जैसे कि हमारे शुरू से ही संस्कार थे, तो पढ़ाई पढ़ती रही, क्योंकि मैं घर में रहकर, हमारा घर था सेंटर से करीब 1.5 घंटे के सफर पर, ट्रेन भी लेनी पड़ती थी और उसको सेंटर पर जाने के लिए फिर चर्च के स्टेशन से बस भी लेनी पड़ती थी। पैदल जाओ तो भी 20 मिनट लग जाता था, तो इसलिए कभी बस में कभी पैदल सेंटर पर जाते थे। और जब ब्रह्मा बाबा आया बंबई में पहली बारी, उसके पहले में है तो एक तो पहला तो मिडवीफ्री हॉस्पिटल में काम किया, पीछे मम्मा थी तब संजो डिस्पेंसरी में भी काम करती थी। फिर ब्रह्मा बाबा आया तो मैंने कहा कि हमको नौकरी ऐसी चाहिए जो हम मॉर्निंग क्लास मिस ना करें। हम कैसे मिस करें, क्योंकि मम्मा बाबा मुंबई में होते थे तो सिर्फ एक मॉर्निंग क्लास लेते थे, शाम को तो मुंबई में इतने दूर से लोग नहीं आते, इसलिए शाम का क्लास नहीं लेते थे। तो हमने कहा मॉर्निंग क्लास जरूर करना है, इसलिए मैंने अपनी नौकरी की ऐसी शिफ्ट ली जो हम सवेरे शाम सेंटर पर आ सकें और बाबा की मुरली सुन सकें। तो समझो मैं रोज सवेरे भी आती थी और शाम को भी, हमारी क्योंकि नौकरी बंबई में थी, रहना 20 मील दूर था, तो शाम को भी नौकरी पूरी होते मैं फिर से सेंटर पर आ जाती थी, बैठती थी, कुछ काम काज करती थी, आसन जो दादियों से मिलती थी, ऐसे सवेरे शाम दोनों टाइम सेंटर पर आती थी। घर से हम 5:30 निकलते थे, रात को 9:30 पहुंचते थे, तो घर में जाकर सिर्फ सोना होता था। और सैटरडे संडे या जब भी छुट्टी होती थी तो सारा दिन सेंटर पर रहती थी। दादी कहती थी घर में क्या करेंगे, आ जाओ, तो सारा दिन सेंटर पर रहती थी। तो ब्रह्मा बाबा आने के बाद भी ऐसे ही करती थी कि संडे के दिन सारा दिन सेंटर पर रहती थी। तो इसी रीत से सेंटर पर रहना जैसे कि घर ही लगता था ना, सेंटर अपना घर है, वो घर तो निमित्त मात्र ही था। तो फिर क्या हुआ कि बंबई में उन दिनों में सिर्फ 2 सेंटर थे और दोनों फ्लैट में थे। तो रमेश भाई ने मुझे कहा कि तुम कांदीवली में इतना दूर रहती हो, थोड़ा बंगलो टाइप हमारा सेंटर होना चाहिए तो आश्रम की भाषा आवे, तो तुम देखो कि आपके तरफ मकानों की प्राइस क्या है। तो हमने मन ही मन में सोचा कि मकान की प्राइस देखने के पहले मैंने सोचा कि हमारे लकी पिता ने हमारी बहनों की शादी में उनको फ्लैट दिया था, क्योंकि वो समझते थे कि हमको ऐसे नहीं कि धनवान के घर में ही बेटी देनी है, लड़का अच्छा हो फिर उनको दहेज में फ्लैट दिया। तो हमने सोचा कि हमको तो शादी करनी नहीं, और हमारे पिताजी के मकान के पीछे जमीन का प्लॉट इनका खाली पड़ा था। तो हमने मन में सोचा कि मकान ढूंढूं, इससे क्यों नहीं ये जमीन के प्लॉट के लिए हमारे लौकिक पिता से बात करूं। परलौकिक पिता के साथ बात करने के पहले हमने ब्रह्मा बाबा बम्बई में थे तो पूछा कि बाबा मैं क्या करूं, हमारे लौकिक पिता से ये जमीन के लिए मांग करूं। तो बाबा ने कहा हाँ, तुम्हारा लौकिक बाप यदि जमीन देगा तो अलौकिक बाप मकान बना देगा। तो लौकिक बाप से पूछा तो कहता है नहीं नहीं, लड़कियां इतना नजदीक होना अच्छा नहीं है, तुम अपना फ्लैट ढूंढो, मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, फ्लैट का पैसा दूंगा। तो फिर हमने सेंटर के लिए फ्लैट ढूंढना शुरू किया। नहीं तो बाबा का नहीं, ज्ञान का इतना प्रभाव था कि हम लौकिक में कभी अकेले बाहर नहीं जाते थे। कभी भी नए स्थान पर जाना होता था तो हमारा भाई या चचेरा भाई या चाचा या कोई हमारे साथ आता था। मिसाल के तौर पर जब मैं मेडिकल स्टडी में समझो फर्स्ट इंटरव्यू देने गई तो भी मेरा चाचा साथ में था। तो परंतु अभी हमारे घर वाले कोई ज्ञान में नहीं थे। हमने कहा मुझसे तुम्हें कंपनी के लिए मांग नहीं करोगे, मेरे साथ चलो, हमको सेंटर का मकान ढूंढना है। तो कभी अकेले कभी कोई लोकल बीकेस के साथ हम मकान ढूंढना शुरू किया। तो हमारे लौकिक पिता का ये इच्छा थी कि मैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कांतिवली में करूं जहां वो रहते थे, क्योंकि वो भी समाज सेवी था और उन्होंने स्कूल खोली थी, हॉस्पिटल खोली थी, ऐसे ऐसे काम किए थे वहां के रास्ते, गांव के रास्ते ठीक करने के लिए भी समझे चंदा इकट्ठा करता था और फिर काउंसिल को मदद करता था। तो उनकी इच्छा थी कि मैं कांदीवली में सेंटर खोलूं और जैसे मिडवाइफरी की हॉस्पिटल खोलूं जिसमें जैसे बच्चों माताओं डिलीवरी करने आए ऐसी हॉस्पिटल खोलूं। और मैंने कहा कि ऐसी हॉस्पिटल खोलेंगे तो मैं फंस जाएंगी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कभी भी पेशेंट आते हैं और रात को भी डिलीवरी होती है तो रात को भी डॉक्टर को जाना पड़ता है, तो हमारी सेवा में तो कोई नियम ना रहे कि सेवा के टाइम में भी कभी इमरजेंसी हो गई तो दौड़ना पड़े। तो इसलिए मैंने कहा मिडवाइफरी हॉस्पिटल तो नहीं खोलनी है। फिर बाबा से पहले पूछा कि बाबा मेरा लौकिक बाप चाहता है कि मैं कांदीवली में अपनी प्रैक्टिस शुरू करूं, मेरी इच्छा तो गांव में सेवा करने की है। बाबा कहते हैं कांदीवली भी तो गांवड़ा है ना, क्योंकि शहर से तो 20 मील दूर था, कांदीवली भी तो गांवड़ा है, कांदीवली में ही शुरू कर। तो इसलिए मकान भी मैंने कांदीवली में ढूंढना शुरू किया, फ्लैट भी। और क्योंकि उन दिनों में फ्लैट बनते थे तो छोटे छोटे कमरे होते थे, तो तैयार फ्लैट लो तो तोड़ना पड़े दीवार, इसलिए हमने मकान ऐसे ढूंढना शुरू किया जो बन रहा हो, दो फ्लैट हो जाए ताकि एक फ्लैट का हम क्लासरूम बना सकें और दूसरा फ्लैट रहने के लिए हो जाए। बनता हुआ है तो उसमें हम जैसे चाहते हैं वैसे हो सकता है। तो इसलिए मैंने ढूंढना शुरू किया और कांदीवली में ही प्रैक्टिस भी शुरू की और बाबा की सेवा के लिए मकान भी लिया। तो हमारे पिताजी ने सबका खर्च दिया, मकान का, डिस्पेंसरी का, ये वो। और उन्हीं दिनों में जब मकान करीब तैयारी हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी, ब्रह्मा बाबा बम्बई में थे तो दादी उनको उस मकान में ले आई और अनऑफिशियली इनॉग्रेशन जैसा किया जो भी वहां के स्टूडेंट थे। क्योंकि मैं ज्ञान में आई तो उस समय एक दो स्टूडेंट थे जो उसी सबब में रहते थे और उनकी मांग थी कि हम यहाँ कुछ सेवा करें, तो दादी ने मुझे कहा तुम ही जाकर क्लास कराओ। और मकान भी फ्लैट अभी तैयार ही हो रहा था, पूरा तैयार नहीं हुआ था, परंतु हम कुछ कोर्स कराती रहती थी क्योंकि डिस्पेंसरी हमारी पहले शुरू हो गई थी, तो डिस्पेंसरी में जो पेशेंट आते थे हमारे डिस्पेंसरी में हमने झा त्रिमूर्ति कृष्ण शिव बाबा के चित्र लगा के रखे थे, तो जो भी पेशेंट आते थे ज्ञान के बारे में पूछते थे, तो हमारा 9 से 12 प्रैक्टिस होती थी, तो 12 बजे वो लोग आकर हमारे से ज्ञान की चर्चा करते थे। तो डिस्पेंसरी बंद होकर फिर जैसे कि क्लास शुरू हो जाता था। तो इसलिए जब बाबा आए तब तक तो हमारे पास 10-15 स्टूडेंट भी थे और योगिनी का परिवार नीचे ही रहता था, तो जैसे ही मैं ज्ञान में आई तो योगिनी के परिवार को भी ज्ञान दिया, मीरा योगिनी उसकी माताजी उसकी सब बहनें भाई सब हमारे मकान में ही रहते थे, तो रोज शाम को हम जाकर उनको कोर्स कराती थी, तो उनको हमने घर में ही कोर्स कराया और मम्मा थी तो मम्मा के पास उनको साथ में ले जाती थी, वो छोटे छोटे थे सब भाई बहने उनको साथ में भी ले जाती थी। तो इस रीत से जब ब्रह्मा बाबा आए तो 10-15 जन तो स्टूडेंट तैयारी थे, तो उनको भी बुला लिया और ब्रह्मा बाबा ने आकर मकान में पांव भी रख दिया। फिर तो संजो सेंटर शुरू हुआ, हमारा मकान हमको 1966 में मिला, तो फिर सेंटर शुरू हुआ और डिस्पेंसरी हमने 65 में शुरू कर दी थी। तो फिर तब तक समझो जब मम्मा ने 65 में शरीर छोड़ा तब तो मैं घर में ही थी, घर में ही समाचार मिला था कि मम्मा ने शरीर छोड़ा। तो फिर समझो साल में एक बारी मधुबन आना होता था, 4-5 दिन उन दिनों में हम रहते थे और चले जाते थे। तो क्या हुआ कि जब समझो मधुबन में एक बारी मैं बंबई से एक ग्रुप को लेके आती थी, और क्या होता था कि उन दिनों में हम लोग तो सारा ट्रेन में सफर करते थे, तो कांदीवली से लोकल ट्रेन लेकर हमको बॉम्बे सेंट्रल पर आना पड़े, बॉम्बे सेंट्रल से ट्रेन लेकर हमको फिर अहमदाबाद बदलना, अहमदाबाद से बदलकर फिर आबू रोड, आबू रोड से सामान उतार के बस में लेकर ऊपर आते थे, फिर वहां से बस स्टॉप से सामान या तो कुली ले आता था या तो बैलगाड़ी में आता था। तो इतनी बारी बदलना पड़े और उन दिनों में हम समझो मुंबई से बकेट ले आते थे बाल्टी गर्म पानी की, बिस्तर होता था अपना कपड़े की पेटी होती थी, टोली वगैरह का कुछ डब्बा होता था तो सब स्टूडेंट को भी संभालना सामान भी संभालना। और बॉम्बे सेंटर पर वहाँ गाम देवी सेंटर जो नजदीक है वहाँ से न्यू बैंक थी उस समय, उसमें आम की सीजन क्योंकि हम लोग ज्यादातर अप्रैल मई में आते थे क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती थी तो माँ बाप है उन दिनों में आ सकते थे, तो समझो सब कुछ संभालना। और उसमें बम्बई से सेंट्रल से हमको नीमू मैंने आम का टोकरा दिया है कि आप मधुमन जाती हो आम की सीजन है बाबा के लिए ले जाओ। अब रास्ते में पता नहीं कहाँ हम भूल गई मैं बहुत बधाई तो याद आया क्या हमका टोकरा दे गया कहाँ। तो मैंने जाकर बाबा को बताया कि बाबा नीमू बहन ने आम का टोकरा तो दिया था पर मैं भूल गई, मतलब ऑनेस्टली बता दिया हमने, कोई डरा नहीं कि भाई हम भूल गई है बाबा क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, छुपा रखे ऐसे नहीं, मैंने आकर बता दिया। तो मतलब बाबा ने समझा कि ये ऑनेस्ट बच्ची है, सच्चाई है इसमें। तो इस रीत से बाबा ने ऐसे छोटी छोटी बातें मार्क करके व्यक्ति को ऐसे पहचान लेते थे जो सचमुच उनकी परखने की शक्ति ऐसी थी। और जब भी हम किसी का अनुभव भी सुनते हैं ना, ईश्वरी के ज्ञानामृत में भी कईयों ने अपना अनुभव लिखा है कि कैसे बाबा देखते ही हरे की जन्म पत्री जान धरते थे और उसी अनुसार उनको राय सलाह देते थे कि जीवन में क्या करना है कैसे चलना है, क्योंकि सब बाबा से राय पूछते थे कि बाबा हम क्या करें, नौकरी करे छोड़े पढ़ाई करे ये करे। तो बाबा को ये बहुत जैसे देखते ही मालूम पड़ जाए, जैसे अभी सुदेश बहन जर्मनी की पहली बार आई मधुबन में, पूरा ज्ञान भी नहीं लिया था, माँ के मासी के साथ आ गए तो बाबा ने कहा कि ये ज्ञान की बुलबुल बनेंगी। और अभी आप देखते हैं कितना ज्ञान अच्छा सुनाती, लेक्चर में भी बहुत अच्छा लेक्चर करती है। तो एक देखते ही जैसे, और एक बहन अपना अनुभव सुनाती है क्योंकि 60s में तो ब्रह्मा बाबा के चित्र कोई सेंटर पर नहीं होते थे, तो जब पहली बारी मधुबन आई ब्रह्मा बाबा के सामने बैठी, सोचने लगी इनको मैंने कहाँ देखा, मन ही मन में सोचती थी कि इनको हमने कहाँ देखा। और बाबा ने कहा बच्ची तुम जानती हो मैं तुम्हारा सपनों का साथी। फिर उसको फौरन याद आया कि वो बचपन में शिव जी की भक्तन थी, तो उसको शिव बाबा का शिवलिंग का भक्तन थी ना, तो शिवलिंग का और ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ था, खुद भूल गई। और बाबा ने जैसे कि उसको याद दिलाया कि मैं तुम्हारा सपनों का साथी। तो कैसे शुरू शुरू में मैं आई तो हमने कहा ज्ञान शुरू किया, हमने सोचा कि शिव बाबा भगवान है हम मानेंगे, क्योंकि निराकार भगवान है वो मानने में हमको कोई हर्जा नहीं, पर ये ब्रह्मा बाबा उसका मीडियम है कैसे माने। और 5000 वर्ष का चक्र है कैसे माने, क्योंकि साइंस वाले तो कहते हैं सृष्टि अनादि है अविनाशी है, ये डायनासोर इतने सालों से हजारों सालों से है, और बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का ही चक्कर है कैसे। तो क्या हुआ कि हमने जब यज्ञ की हिस्ट्री सुनी कैसे कैसे बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने साकार के द्वारा या कोई संदेशी के द्वारा कैसे कैसे सबको इतना समझो बातें बताई जो कोई ज्योतिष भी नहीं बता सके। जैसे शील दादी अपना अनुभव सुनाती थी कि उसको बहुत डिसेंट्री हो गई थी, जुलाब हो गए थे ना, तो जब उसको डिसेंट्री हो गई जैसे खून और पस जगह पेट से निकलता है ऐसी, और घड़ी घड़ी आधे आधे घंटे पर जाती थी और बहुत वीकनेस आ गई। और उन दिनों में वो लोग क्या करते थे, कभी भी डॉक्टरों को दवाई नहीं लेते थे, इलाज नहीं करते थे। तो जब बाबा ने पूछा भाई डॉक्टरों को बुलावे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहते थे ना ये डॉक्टर तो शुद्र है, उसका हाथ भी कैसे हमारे शरीर को छुए। तो इसलिए दवाई नहीं लेने जाते थे, तो बाबा संदेशी को भेजते थे कि भाई संदेशी जाकर पूछ क्या हो, किसका इलाज क्या करे। तो संदेशी गई ध्यान में, और ध्यान में जाकर कहे कि उसको अनार का जूस पिलाओ, अनार का जूस निकाल के उसका थोड़ा गरम करके नमक काली मिर्ची डाल के आधे आधे घंटे में दो दो चम्मच पिलाओ। तो बाबा को संदेश दिया, नहीं संदेश आकर ब्रह्मा बाबा को बताती थी कि क्या ये इलाज करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने भाव को कहा कि भाव जाकर बाजार से अनार ले आओ, और भाव भी तो एकदम बाबा का बहुत ओबीडियंट, बाबा ने कहा है जरूर करना। विश्व किशोर भाई को हम भाव कहते थे, कहा कि हमको ले आना, अनार की सीजन नहीं थी, पर उसको तो था मन में के ले ही आना है, बाबा ने डायरेक्शन दिया है मिलेगा ही कहा। तो भाव भी क्या करता था, सामने तो जब सीजन नहीं है उनके पास एक दो फल होते हैं तो क्या करते हैं, सामने नहीं रखते हैं, अंदर छिपा के रखते हैं। तो भाव भी शॉप में अंदर पीछे से जाता था, देखता था कि इनके पास अनार है या नहीं, तो कहां से ढूंढ के ले आया और पिलाया, और वो ठीक हो गई। निर्मल शांता दादी भी अपना अनुभव सुनाती थी कि देखो उसको 104 डिग्री बुखार था, फारेनहाइट 104 डिग्री फारेनहाइट बुखार था, और उसको बाबा ने पूछा डॉक्टर को बुलाएं, कहा नहीं डॉक्टर को नहीं दिखाना, संदेशी को भेजा कि जाओ क्या इलाज करे अभी इसको। तो संदेशी संदेश लाए, उसको आइस वाटर से स्नान कराओ। तो ब्रह्मा बाबा सोच में पड़ गए कि इसको बुखार वाली को इतने ठंडे पानी से आइस वाले वाटर से स्नान कराएंगे तो बिचारी मर जाएंगी, वैसे भी दमा की बीमारी थी उसको बहुत। तो कहा कि क्या करें, तो उसको पूछा निर्मल शांता दादी इसके फिर से करेगी स्नान, तो कहा बाबा जब बाबा ने डायरेक्शन दिया क्यों नहीं। तो बाबा ने ऑर्डर दिया किसी बहन को कि भाई आधी बकेट आइस वाटर ले आओ, बाथरूम तक ले आई। फिर से बाबा ने संदेशी को भेजा कि भाई जाओ जाकर पूछो सचमुच इसको स्नान कराना है क्या। तो बाबा ने इसे संदेश में जवाब दिया कि नहीं, ये तो मैं उसकी परीक्षा लेता था, उसका निश्चय है उसको सिर्फ आइस वाटर बैग, आइस की बैग रखना सिर पर और छाती पर आइस लगाना, स्नान नहीं करना, और वो अच्छी हो गई। तो क्या है कि ऐसे ऐसे इतने अनुभव यज्ञ में हुए कि साकार बाबा ने कुछ बातें की, कुछ अव्यक्त बाप दादा ने। साकार बाबा भी कई बीमार होते थे ना, जाकर दृष्टि देते थे और उसमें कोई नर्स होती थी या तो विश्व किशोर भाई और विश्व रतन भाई कुछ थोड़ी कुछ दवाई जानते थे या घरेलू कुछ दवाई करते थे, तो बाबा जाकर दृष्टि देता था उनको, माथे पर हाथ रखता था और बस बाबा की दृष्टि लेकर ही वो खुश हो जाते थे, उसकी बीमारी दूर हो जाती थी। पर उसके अलावा संदेशियों ने जो संदेश लाया, क्योंकि संतरी दादी और भाव युगल थे ना, तो जब वो कराची से माउंट आबू में आए तो अपना मकान बेच के आए, तो मकान को मुस्लिम ने ले लिया था। अब संदेशी दादी को दमा रहता था, तो उसने बाबा को कहा कि बाबा ये क्यों हमको इतनी बीमारी रहती है।
अरे शिव की
तो संदेश दादी संतरी दादी को ये संकल्प होता था कि भाई मुझे इतनी बीमारी क्यों है दबा के। तो उसने बाबा से पूछा, तो बाबा ने संदेशी से पूछा, तो संदेशी ने कहा कि ये समझती है कि मैं अपने आप को पूरा समर्पित किया है, परंतु जब कराची का मकान छोड़ा तो सारे चांदी के बर्तन छोड़ के आई है, और बाबा ने लिस्ट दिया इतनी थालियां, इतने कटोरी, इतने ग्लास, इतने चम्मच, सारे चांदी के अपना छोड़ के आई है। इसलिए संतरी दादी भाव और प्रकाशमणि दादी तीनों जाओ कराची और ले आओ। तो ये तीनों गए फिर अबू से कराची, और मकान जिसको बेचा था उसको मिले और कहा हमारा यहाँ कुछ सामान रह गया है। तो उसने कहा बोले देख लो कहाँ है। तो क्या है, उन दिनों में वो लोग क्या करते थे, उनके पास कोई तिजोरी वगैरह तो नहीं होता था ना, तो मकान के फ्लोर में अंडरग्राउंड जैसे वो बनाते थे सेफ जैसा, तो ऊपर से ढक्कन खुल जाए अंदर नीचे कुछ रख सकते हैं। तो उसमें ये सारे बर्तन पड़े थे, और फिर क्या करते थे कि फ्लोर पर चटाई डाल देते थे या कारपेट आ जाता था, तो मालूम भी नहीं पड़े कि यहाँ कोई गुप्त द्वार है, परंतु उनका तो घर था तो उनको मालूम था कहाँ रखा था। तो सारा निकाला और उसने मुसलमान होते हुए भी इसको कहा भले जो आपका है ले जा, तो उनको दे दिया। तो ऐसे ऐसे कई बाबा ने संदेशियों द्वारा चमत्कार दिखाए थे। जब हमने ये सुना तो हमने कहा सचमुच ये ज्ञान सच्चा है, सच्चा है, शिव बाबा इसको देते हैं और शिव बाबा कहते हैं जो कुछ कहते हैं सच है। ब्रह्मा बाबा मीडियम है और 5000 वर्ष का चक्कर है, ठीक है। तो फिर उन दिनों में 64 में प्रदर्शनी शुरू हुई थी, नए नए चित्र बम्बई में बनाए थे और हम लोग सारे गाइड्स थे, तो गाइड्स को ट्रेनिंग मिल गई थी, इसलिए जहाँ जहाँ प्रदर्शनी करते थे वही चित्र जाते थे और बम्बई के गाइड्स को बुलाते रहते थे। तो बड़ौदा में प्रदर्शनी हुई, कलकत्ता में प्रदर्शनी हुई, तो बाबा खुद नाम लिखते थे कि फलाने फलाने वहाँ जाए प्रदर्शनी के लिए। तो हमको भी जब बाबा लिखते थे तो हम चले जाते थे। अब जब कलकत्ता में पहली प्रदर्शनी हुई टिबरीवाला धर्मशाला में, तो उनको कलकत्ता में गाइड्स कम पड़ गए, तो हमको लास्ट मिनट ब्रह्मा बाबा ने लिखा कि आप भी जाओ गाइड बनकर कलकत्ता। अभी लास्ट मिनट ट्रेन तो नहीं मिले, तो मैं और मुंबई से उषा बहन की छोटी बहन आशा, हम दोनों फ्लाइट से गए कलकत्ता। तो उन दिनों में फ्लाइट में कोई आता है मुंबई से कलकत्ता तो बड़ी बात थी, और हम दोनों खास प्रदर्शनी के लिए कलकत्ता गए तो सब आश्चर्य खाते थे, सब कहते थे ये दोनों तो देखो फ्लाइट से यहाँ ये प्रदर्शनी। तो जैसे कि बाबा की जो भी डायरेक्शन आते थे हम फौरन कर लेते थे। तो इस रीत से संजो बाबा सेवा के लिए भी डायरेक्शन देते रहते थे। और सेंटर शुरू किया तो हमारे तो डिस्पेंसरी चालू थी, तो सवेरे 9 से 12 शाम को 6 से 9 डिस्पेंसरी में जाना है, तो सेंटर पर और तो कोई चाहिए खाना पकाने वाली कोर्स कराने वाली, तो बाबा ने पहले से ही हमको मदद दे दी थी। बाबा ही उस समय तो सब प्रोवाइड करते थे, सेंटर पर बहनों चाहिए बाबा कहेंगे फलाने फलाने स्थान से जाए, तो हमको भी 2 बहने दे देता था। एक दादी कला दादी थी जो कि खाना पकाती थी और जैसे माँ के रूप में वहाँ रहती थी, उसके साथ साथ फिर कोई कुमारी भी हमारे साथ रहने लगी ताकि कोर्सेज कराना, क्लासेस कराना वो कराती रही। और सेंटरों में उन दिनों में क्या होता था कि अभी तो सब पिक्चर प्रिंट होके आते हैं, तो इसलिए कोई देरी नहीं लगती, जिसको चाहिए ऑर्डर देते हैं और थोड़े समय में मिल जाता है। पर उन दिनों में तो कृष्णा नगर में ही सारी जैसे कि चित्रशाला बनी हुई थी, चित्र वहाँ बनाते थे, तो झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र हमारे सेंटर पर चाहिए था और चित्रशाला भी तो बिजी रहती थी। तो बक्रमा बाबा पत्र लिखते थे ना कि फलाने सेंटर के लिए चित्र बनाओ, तो जल्दी बन जाता था। तो हमारे सेंटर के लिए भी ब्रह्मा बाबा ने पत्र लिखा चित्रशाला में दिल्ली कृष्णा नगर में, तो हमारे लिए भी जल्दी जल्दी 4 फुट बाय 6 फुट का ये बड़ा चित्र झाड़ो त्रिमूर्ति का बनाकर आ गया था। और बाबा ने हमको शुरू से जिम्मेवारी दी दी, क्योंकि मैं जब मकान शुरू हुआ तो उसके पहले मैं कभी सेंटर पर रही नहीं थी, आती जाती थी, परंतु बाबा ने हमको ही सेंटर की जिम्मेवारी निमित्त बना दिया और रख दिया वहाँ, और साथ में मददगार दो बहने दे दी। तो बाबा अव्यक्त होने के बाद भी मैंने दादी प्रकाशमणि से पूछा अभी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ूं, दादी कहने अभी नहीं। जब 71 में मैं गई विदेश सेवात, फिर आई, फिर लंदन वालों ने मांग की कि हमको निर्मला को ही वापस भेजो, क्योंकि अनुभवी हो गई है तो वही वापस आवे तो अच्छा है। तब दादी ने हमको छुट्टी दी कि भले मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दो। तो जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 1969 18 जनवरी, तब हम सेंटर पर ही रात को थे, तो रात को 9:30-10 बजे फोन आया, ब्रिजेंद्रा दादी ने फोन किया कि निर्मला ड्रामा पर अडोल है। पहले ऐसे पूछा, पीछे कहा कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। फिर तो हम तीनों बहनें योग में बैठ गई, और हमारी जो दो साथी थी उन्होंने तो सवेरे की पहली ट्रेन जो मिली 5-6 बजे की, क्योंकि रात उन दिनों में तो हम लोग ट्रेन पकड़ते नहीं थे अबू आने के लिए, तो ट्रेन पहली जो मिली उनमें वो लोग सब बम्बई से मेजोरिटी टीचर्स बहने सेंटर वाले निकल गए। तो मैं और शिलेंद्रा दादी बैठे रहे। हमने कहा सवेरे स्टूडेंट्स आएंगे, उसको जवाब देने के लिए, मुंह दिखाने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए कौन रहेगा, सब बहने चली जाएंगी, समाचार तो देना पड़ेगा सवेरे क्लास में, इसलिए मैं नहीं गई और बम्बई से शिलेंद्रा दादी भी नहीं गए। तो हम दोनों बम्बई में ही रहे और स्टूडेंट्स को समाचार देकर फिर 2-3 के बाद प्रकाशमणि दादी ने हम लोगों को फोन किया कि नहीं आप भी आ जाओ, अभी शील दादी और मैं भी पीछे यहाँ 21 तारीख को जस्ट लास्ट हम लोग पहुंचे बाबा का अंतिम क्रिया करने के पहले, अंतिम संस्कार करने के पहले हम उसी दिन पहुंचे। और जनवरी में नहीं तो हम लोग कभी जनवरी में नहीं आते थे ना, बम्बई वाले तो खास, क्योंकि ठंडी यहाँ की है और बम्बई में तो ऐसी कई ठंडी नहीं होती। तो हम पहली बारी इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा हुआ, 18 जनवरी को 700 लोग आ गए थे मधुबन में, नहीं तो छोटे छोटे ग्रुप आते थे 25-50, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग आते थे मधुबन में, वो भी अप्रैल मई में, कोई जनवरी में। तो हम लोग भी बाबा को बुलाते थे, बाबा अभी ठंडी है, आपके पास कोई पार्टी नहीं आ रही है, बम्बई आ रहे हो, तो बम्बई आते रहते थे। बम्बई जब भी आते थे जनवरी दिसंबर जनवरी में ठंडी में आते थे। हम लोग बाबा को कहते थे बाबा आपकी चेकिंग भी हो जाएंगी, क्योंकि मम्मा बाबा को सारा ट्रीटमेंट के लिए चेकिंग के लिए उन दिनों में बम्बई ही आते थे, तो हम लोग बुलाते थे। तो मुंबई वालों को ये लाभ ज्यादा मिला, क्योंकि मम्मा भी बीमार थी। तो लास्ट में एक साल ज्यादातर बम्बई ही रही, तो इसलिए हम लोगों को मम्मा बाबा की पालना तो मिलती रही। और बम्बई में दादियां भी कितनी थी, निर्मल शांता दादी, पुष्प शांता दादी, आत्ममोहिनी दादी, ब्रिजेंद्रा दादी, रतन मोहिनी दादी, शील दादी, और मेन सेंटर पर ही सब दादियां थी। सिर्फ ब्रिजेंद्रा दादी साइंस सेंटर पर रहती थी, बाकी सब दादियां कोलाबा, ग्राम देवी और जो वाटरलू मेंशन सबसे पहला सेंटर था वहां ही रहते थे। तो हम लोगों को उनकी पालना भी मिल गई, डबल लाभ हो गया, दादियां मम्मा बाबा सबका लाभ मिलता रहा। और उसी कारण हम लोगों का अच्छी ही पालना होती रही। और बाबा मम्मा से तो एक हर साल यहाँ मिलने आते रहते थे। तो इस रीत से हमने देखा कि बाबा ने जो समझो एडमिनिस्ट्रेशन की कला सिखाई, जो डिसिप्लिन सिखाई ना, कि बाबा हमेशा टाइम पर एकदम क्लास में आ जाता था, कभी लेट नहीं। और सब बच्चों से इतना प्यार से मिलते थे, सब समझते थे बाबा हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो आते ही समझो समाचार पूछते थे, कैसे हो बच्चे, रोज समाचार पूछते थे, ठीक है बच्चे, सब ठंडी के दिनों में सब है, ठंडी गर्म है नहीं है देखते थे। और मजदूरों को भी उसी समय से हर विंटर में ब्लैंकेट मिलते रहते हैं। तो इसलिए बाबा का जो प्यार था, बेहद का प्यार, निष्पक्ष प्यार, उससे क्या है कि सब बच्चों की ज्ञान से और प्यार से दोनों से बाबा ने पालना की। ज्ञान में भी बाबा बहुत ध्यान देते थे कि सब बच्चे क्लास में ध्यान से बैठते हैं और ऐसे ऐसे करके सुनते हैं, ऐसे नहीं चुटके खाते हैं, जब जरा भी कोई चुटका खाएगा बाबा मुरली सुनाएगा, कि इंटरेस्ट नहीं है तभी चुटके खाते हैं, नींद आती है। ज्ञान रत्नों की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो बाबा तो सीधा मुरली में जिसको जो कहना होता था कह देता था, तो जो जिसने गलती की है वो तो समझ जाता था कि मेरे लिए बाबा ने आज ये सावधानी दी है। और दूसरे भी समझ जाते थे कि आज बाबा ने मुरली इस पर चलाई है। तो एक तरफ प्यार भी था, तो दूसरी तरफ स्ट्रिक्ट भी था और लॉफुल भी था। तो बाबा के जीवन में इतना बैलेंस था, जो सदैव आनंदमय की स्थिति रहती थी। और बाबा को सर्विस का भी देखो कितना शौक था, जो हमेशा मुरली में सर्विस के भी डायरेक्शन देते रहते हैं, क्या करो कैसे करो कैसे करना है। तो इस रीत से बाबा ने हरेक की बहुत ही अच्छी रीत से पालना की। ओम शांति। अभी हम फिर से एक गीत सुनकर 8 बजे तक पूरा कर देंगे।
तो हम सबने सबने यात्रा की 1962 से अब तक। तो मुझे भी कुछ बातें याद आई कि जिस समय निर्मला दीदी को मकान मिला कांधीवली में, तो उस समय बाबा ने इनको कहा कि यहाँ कुमारियों की ट्रेनिंग रखो। तो मुझे याद है उस कुमारियों की ट्रेनिंग में मैं भी कुमारी थी तब। दीदी वो तो सुनाओ, दो मिनट भूल कुछ वो ट्रेनिंग का सुनाओ।
तो क्या है कि कुमारियों को रखा वहाँ मकान में, और शिल दादी संदेशी थी उस समय। तो ये मुझे बरोबर याद है कि शिल दादी ध्यान में गए और सबके पास जाकर उनका चित्र दौड़ती थी। उसकी आत्मा में कितने दाग है और उसका प्रकाश कहाँ तक फैलता।
मुझे याद है हम लोग सब 30-40 कुमारियां थी, तो शील दादी ध्यान में और उसकी आंखें बंद और एक एक कुमारी के आगे आ रही है और उनका चित्र निकाल रही है।
आत्मा का चित्र
कि इसमें कितना अभी तक कितनी कालिक है, अभी तक काला कितना है और पवित्रता कितनी है और कितनी। तो हरे को डर लगने लगा, पता नहीं हमारा कैसा होगा। मुझे वो भी दृश्य याद है अभी तक। और हम तो दीदी को कहेंगे कि हमारा भी इनके साथ बहुत ही रिलेशन है, क्योंकि जब उस समय मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, आज मैंने अपना अनुभव सुनाया विदेशियों को, तो इंटर साइंस में थी 67 में, जब बाबा ने जब इन्होंने मकान लिया कांदेवली में और ट्रेनिंग ली, तो उस समय हमको घर में सब कहते थे आप भी डॉक्टरी करो। तो तब मैंने दीदी से पूछा, दीदी मैं क्या करूं? तो दीदी ने कहा, अरे क्या रखा है डॉक्टरी में, छोड़ो तुम बाबा की सेवा में लग जाओ। और बाबा ने भी मुझे,
मैंने कहा मैंने पढ़ाई की, मैं छोड़ना चाहती हूँ, अभी तू क्यों पढ़ाई करेगी डॉक्टरी की।
तो दीदी ने मुझे एकदम से जैसे निर्संकल्प कर दिया, पर बाबा को मैंने पत्र भी लिखा था और बाबा ने मुझे भी पत्र में जवाब दिया कि बच्ची बाबा तो चाहेंगे कि आप रूहानी डॉक्टर बन करके विश्व की सेवा करो। और निर्मला दीदी ने भी हमें कहा कि अब डॉक्टरी वॉक्टरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन घर वाले बहुत बंधन डाल रहे थे कि तुमको पढ़ना ही है। तो दीदी ने बहुत अच्छी राय दी कि क्या करो, उसकी जगह आप 2 साल का BSc कर लो, माना डिग्री कोर्स कर लो, और तो घर वाले कोई बंधन नहीं डालेंगे। तो दीदी ने ही मुझे ये प्रेरणा दी और उसके बाद मैंने BSc किया और फिर समर्पित हो गए। और फिर दीदी के साथ ही हम अफ्रीका सेवा पर थे और अफ्रीका से फिर मॉरिशियस सेवा पर आए। 3 मास मॉरिशियस में हम दोनों साथ में रहे और सेवा शुरू की मॉरिशियस। तो दीदी के साथ हमारा इस प्रकार का बहुत सुंदर संबंध रहा। अभी तो हम यहाँ समाप्त करेंगे और उसके बाद फिर डबल विदेशियों को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देनी है। कल सुबह के भी इंस्ट्रक्शंस अभी देंगे क्योंकि कल साइलेंस डे होगा। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद शशि बहन सभी कल के इंस्ट्रक्शंस सभी देंगी। अभी बाबा की याद में बैठेंगे, 8 बजे हम समाप्त करते हैं। कोई भी उठेंगे नहीं। गीत गाना है
उनका।
ठीक है, तो सब बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद सभी बैठे रहेंगे। शशि बहन अभी आ रहे हैं और वो सबको इंस्ट्रक्शंस देंगे।
कहें उतना है कम, जिन्हों बाबा का कथन। जितना कहें उतना है कम, जिन्हों बाबा का कथन। आबू को तीर्थ बनाया, जहाँ होता प्रभु मिलन। त्याग तपस्या की वो प्रतिमूर्ति, प्रभु पिता का मुखर रतन। जिनकी तपस्या से आज भी मधुबन का है गायन। प्रजापिता नव सृष्टि के निर्माता, मधुबन आंगन है मन भावन सबके मन को लुभाता। शब्दों से नहीं कर सकते हम मधुबन का वर्णन, रूहों को रूहानी रोशनी दे रहा है ये मधुबन। आबू को तीर्थ बनाया जहाँ होता प्रभु मिलन। जगत उधारक सबके भाग्य विधाता, तज के अपने तन को भी आप हुए अव्यक्त फरिश्ता। बच्चों के खातिर सहा किया अपना तन मन धन, आबू को तीर्थ बनाया जहाँ होता है प्रभु मिलन। त्याग तपस्या की वो प्रतिमूर्ति प्रभु पिता का मुकरर तन, जिनकी तपस्या से आज भी मधुबन का है गायन। जितना कहे उतना है कम ब्रह्मा बाबा का कथन, जितना कहे उतना है कम ब्रह्मा बाबा का कथन।